आयू ने एक बार फिर जहान के फाइट क्लब में आरफ के साथ फाइट की। फाइट के दौरान दोनों काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब आरफ ने आयू के पेट पर पंच किया तो वो दर्द के मारे नीचे गिर गई और आरफ को भला बुरा कहने लगी। आरफ का पंच काफी स्ट्रांग था तो आयू की इस वक्त दर्द से हालत खराब हो रही थी। आयू गुस्से में वहां से जाने लगी। दर्द की वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी तो आरफ ने उसे गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगा। मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ, आयू ने रूंधे गले से कहा। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितने पेन में है। हाँ, दिख रहा है मुझे तुम कितनी ठीक हो। हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं और वह तुम्हारे सारे टेस्ट होंगे, पता नहीं कितनी लगी होगी। कभी कभी लगता है कि मैं गुस्से में ओवर अग्रेसिव हो जाता हूँ, खासकर जब कोई मुझे चैलेंज करता है। तुम्हें मुझे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, एक बार के लिए मैं सब भूल गया और मैंने तुम्हें चोट पहुँचा दी, आरफ ने जवाब दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे ये फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। आरफ के चेहरे पर अफसोस के भाव देखकर आयू ने अपने मन में कहा, तो क्या कोई तुम्हें चैलेंज करेगा तो तुम सामने वाले की जान भी ले लोगे आरव? कभी लगता है रोहन झूठ बोल रहा होगा, लेकिन फिर तुम्हारा बिहेवियर देखकर कुछ पता नहीं चलता। आयू को चुप देखकर आरव ने पूछा, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आयू ने आरव को समझाने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता होगा कितनी चोट लगी है कितनी नहीं? देखा, तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू हैं। जब तक मैं डॉक्टर के मुंह से नहीं सुन लेता कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, बोलते हुए आरव ने आयू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बिठा दिया। फिर आरव खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे रोकने के लिए आयू ने कहा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो मेरे मुँह से सुन लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने घर जाना है न कि किसी हॉस्पिटल में। मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला, आरव ने इतना ही कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आयू के लाख मना करने के बावजूद आरव उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। आयू को जब लगने लगा कि आरव उसकी बात नहीं सुनने वाला तो वो चुपचाप बैठकर विंडो के बाहर देखने लगी। उसका हाथ अभी भी अपने पेट पर था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, तो वही आरव गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में आयू को देख रहा था। तुम इस तरह उदास मत रहो ना, मुझे और ज्यादा गिल्ट फील होगा, आरव ने मायूस होकर कहा। आरव की बात सुनकर आयू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बेवजह ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव को यकीन दिलाने के लिए आयू ने अपना हाथ पेट पर से हटा लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। झूठ मत बोलो मुझसे, बोलते हुए आरव ने आयू की तरफ आंखें छोटी करके देखा। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा करो मुझे यहीं पर छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी भी फाइट क्लब रह गई, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। तुम जानते हो ना, पूरे दिन काम करने के बाद मैं थक जाती हूँ, बस तभी फेस थोड़ा डल है, आरव को यकीन दिलाने के लिए आयू उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। आरव ने गाड़ी रोकी और फिर कुछ पल आयू के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसने कहा, ठीक है, अगर जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। बातों ही बातों में आरव को एहसास हुआ कि अब तक उन्होंने नंबर तक एक्सचेंज नहीं किए थे। उसके बाद आरव तुरंत बोला, जल्दी से अपने प्राइवेट नंबर दो। और मैं तुम्हें अपने नंबर क्यों दूं? बोलते हुए आयू ने आरव की तरफ घूर कर देखा। आयू के लहजे से आरव को साफ हो गया था कि वो इतनी आसानी से उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देने वाली। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, तुम क्या चाहती हो? अगली बार तुम्हें जब भी मुझसे मिलने की जरूरत पड़े तो पिछली बार की तरह अपनी इंसल्ट करवानी है। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब ऑफिस में तुम्हें मुझसे नहीं मिलने दिया गया। हाँ, तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए, इतनी सिक्योरिटी और फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? कोई तुमसे मिलना चाहता है तो उसे कोई काम होगा ना, लेकिन नहीं, तुम्हारे ऑफिस में तो अपॉइंटमेंट चाहिए और उसका जवाब भी वो एक हफ्ते बाद देने वाले थे, आयू ने सार्कास्टिक वे में कहा। आयू की बातों का आरव ने भी पूरे एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आरव खुराना हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊं तो मत दो अपने नंबर। आयू ने आरव की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। आरव ने भी उसे अपने प्राइवेट नंबर दे दिए थे। कुछ पल सोचने के बाद आयू ने पूछा, सुनो आरव, अपने चैलेंज के चक्कर में कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। सुबह ऑफिस में तुमने मेरी बातों को गलत तरीके से ले लिया था और पता नहीं उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देती हूँ, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी इसलिए तुम्हें कुछ भी कह दिया होगा। आयू अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि आरव की वजह से उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। आरव अपनी तरफ से आयू को अपने पास रखने का प्लान बन चुका था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद आरव ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए इस बार जाने देता हूँ, तुम भी मेरी बात सुनना और आगे से किसी चीज के लिए जिद मत करना। आयू ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद उसने कहा, मुझे मेपल स्ट्रीट स्टेट के पास छोड़ देना, मैं वहां से कैब लेकर चली जाऊंगी। लेकिन कैब लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के आगे ही छोड़ दूंगा, मुझे तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही है, आरव हैरानी से पूछा। तुम हो लेकिन मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप की है, मेरा अयान के अलावा कोई और मेल फ्रेंड नहीं है, जितना कहा है उतना करो, मैं चली जाऊंगी, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आयु ने जवाब दिया। अगर वो आरफ को अपने घर का रास्ता बताती तो वो समझ जाता कि आयु कौन है। आरफ ने उसकी बात पर हामी भरी और गाड़ी फिर से स्टार्ट की। टाइम पास करने के लिए उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर अनुष्का की ही न्यूज आ रही थी। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है फेमस एक्ट्रेस अनुष्का सिंह ओबेरॉय के नाम, जिन्होंने कम उम्र में हम सबका साथ छोड़ दिया। कहते हैं जो लोग दिलों पर गहरी छाप छोड़ते हैं वो ज्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रह पाते। कुछ ऐसा ही अनुष्का के साथ हुआ। उनकी याद में उनका ही एक गाना प्ले करने जा रही हूँ जो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, आरजे ने कहा और फिर गाना प्ले कर दिया। सॉन्ग प्ले होता उससे पहले आरव ने रेडियो ऑफ कर दिया। आयु ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस पर नर्वसनेस थी। जब भी आरव के सामने अनुष्का का जिक्र होता तो उसे उसके साथ बिताए आखिरी कुछ लम्हे याद आ जाते और साथ ही ये भी कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। आरव के चेहरे के बदले हुए भाव देखने के बाद आयु हैरान थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुमने बंद क्यों कर दिया? मेरा म्यूजिक सुनने का मूड नहीं है, मेपल स्ट्रीट यहाँ से ज्यादा आगे नहीं है, तुम प्लीज खुद से चली जाना, मुझे कुछ काम है, आरव ने काफी रूखे तरीके से जवाब दिया। उसने गाड़ी मेपल स्ट्रीट से बहुत पहले रोक दी। आयु को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। आरव ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो बाहर आ गई। आयु के पेट पर लगी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी और वो पेट को पकड़कर चल रही थी। आरव अचानक ही इतना अपसेट हो गया कि उसका ध्यान आयु पर गया ही नहीं। आयु के उतरने के बाद आरव ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और अपने घर की तरफ लेने लगा। इस वक्त उसके दिल में काफी कुछ चल रहा था।
मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम्हारा जिक्र आते कि मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। ब्लडी हेल, मैं क्यों नहीं बचा पाया तुम्हें? इससे अच्छा होता उस रात में वहां कुछ देर और रुक जाता तो तुम जिंदा होती, आरव ने खुद से कहा। गुस्से में वो काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइव करते हुए ही उसने बीच में कबीर को कॉल लगाया और कॉल पर कहा, कबीर, मुझे अनुष्का सिंह ओबेरॉय की अब तक की पूरी रिपोर्ट चाहिए, मैं घर आ रहा हूँ, वहीं पर मिलते हैं। आरव ने कबीर के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आयु आरव के इस बर्ताव से हैरत में थी। वो उसे गलत समझने लगी। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम क्या हो आरव खुराना। अभी अभी तुमने जैसे रिएक्ट किया उससे एक बात साफ है कि तुम कोई दूध के धुले इंसान नहीं हो, और रोहन सच बोल रहा है, शायद मुझे उससे मिलना चाहिए और यही सही रहेगा। पर साथ ही इन सब में मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा, आयु ने खुद से कहा। बुद्धि में कदमों से चलकर आगे जा रही थी। रास्ते में उसने एक कैब ली और अपने घर जाने के लिए निकल गई। वहीं कोई और भी था जो इन पर कब से नजर रख रहा था। जैसे ही आरव और आयु अलग हुए वो शख्स बाहर निकल कर आया। वो कोई और नहीं, छवि सिंघानिया का मैनेजर राहुल सिंह था। मैम सही कह रही थी, उनके बीच काफी कुछ चल रहा है। कोई बात नहीं, हमें अच्छे से पता है किसका कैसे यूज करना है। आरव खुराना, तुम्हारी कमजोरी कड़ी हमारे हाथ लग गई है, अब घबराने की बारी तुम्हारी है, बोलते हुए राहुल के फेस पर इविल स्माइल थी। उसने छवि को मिलने के लिए मैसेज किया ताकि उसे सब बता सके।